मैंने तो सारी सृष्टि में पाप हो रहा है, सब पापी ही पापी है, बेसिक से लेके एडवांस सब पाप कर रहे हैं। और शिव बाबा भी आ गया पाप में पाप बढ़ाने के लिए, सारा विष पिए चला जा रहा है, पराई स्त्रियां यूज करता चला जा रहा है, तो पाप में पाप बढ़ गया ना। अब ये ब्रह्म कुमार है, समा जा रहा है, शाम को अपने अपने बैज उतार के रख देते हैं रात के 9-10 बजे के बाद, और सब जाके इकट्ठे होके एक हाल में इकट्ठे होके शराब पीते हैं, दुख हो जाते हैं शाम रात को। तो ये मेंटेलिटी उनमें कहां से आ गई? ये मेंटलिटी आई है शंकर के पार्ट से,
इसलिए माना फिर
आज ये विष्णु पार्टी वाले जैसे वो होशंगाबाद वाला वो भी जैसे सारी कन्याओं को सरेंडर करके बैठा है, उसकी बुद्धि में भी यही बात है बैठ रही है,
उनका ज्ञान ले लेते हैं
ना, उनका ज्ञान उठा रहे हैं। भगवान का शंकर उठा लो नहीं कर रहा है, रोज उठा लो करते जा रहे हैं, तो पाप में पाप बढ़ गया ना।
और बाबा जो 16108 है, 16108 की माला, तो उसमें 8000 रुद्र माला और 8000 विजय माला लेंगे क्या? माना अभी रुद्र माला में सिर्फ 8000 का ही काउंटिंग होगा, लेकिन 8000 विजय माला से ऐड होंगे, या फिर 16108 युगल मन के रहेंगे?
रुद्र माला विजय माला दोनों युगल नहीं होंगे।
हाँ तो फिर 8-8000 हुए या 16-16-32 हो गए, फिर 8-8 ही हुए ना,
8000
माना रुद्र माला में सिर्फ 8000 ही।
त्रेता के अंत तक 16108 होंगे,
वो तो ठीक है, लेकिन मुझे माना ये कंफर्म
प्रिंसेस होंगे तो वो 16000 ही बताए, 32000 का होता है।
हाँ 16000 ही बताए है, राज करेगा खालसा, ठीक है। और ये भी बोला कि लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स होंगे, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपेगी, फिर राज करेगा खालसा, तो राज वो खालसा करेगी उसके बाद में ये खुलेगा या उसके पहले खुलेगा फिर, क्योंकि वो परीक्षा लेगी ना, तो फिर उस समय लाखों की तादाद में सेंटर्स खुलेंगे, ये सब मुरलियां छपेंगे।
ओके।
वो परीक्षा लेगी तो अनिश्चय बुद्धि नहीं होंगे,
अनिश्चय बुद्धि होंगे क्या, और ज्यादा सेंटर खुलेंगे, जैसे ब्रह्म कुमारियों के ज्यादा सेंटर खुलते जा रहे हैं, तो ये डूबी जा बाद में होगी कि नहीं?
हाँ होगी, तो उसके पहले खोलना जरूरी है।
हाँ?
तो फिर राज खालसा
विस्तार होता है।
हाँ?
तो सार छुप जाता है या बना रहता है?
वो तो छुप जाएगा,
तो ऐसे ही सार छुप जाएगा, विस्तार होता रहेगा सर, लाख दो लाख सेंटर्स का,
और फिर बाद में डूबी
जा डूबी जा डूबी।
छोटी मम्मी 84 जन्मों में, माना जैसे द्वापर में ले लीजिए कलयुग में, पुरुष चोला धारण करेगी, कभी स्त्री कभी पुरुष बनते हैं ना, तो पुरुष चोला धारण करती है, तो उस समय वो सन्यासी बन के रहेगी या रामली आत्मा भी स्त्री चोला धारण करेगा?
वो भी स्त्री चोला धारण करेगी, रामली भी तो आत्मा स्त्री चोला धारण करेगी,
तो फिर रामली आत्मा स्त्री चोले के जो संस्कार होते हैं वो संगम पर डालते हैं?
क्यों डालते?
कैसे संस्कार डाल रहे स्त्रियों में देहवान होता है, क्या बोलते हैं उसको,
देहवान होता
है, हाँ स्त्री चोलिंग होता है ना,
हाँ
लज्जा होती है, फिर
जगदम्बा स्त्री बनेगी,
कौन बनेगी,
जगदम्बा मतलब हाँ। स्त्री बनेगी
हाँ।
तो रामबली आत्मा पुरुष नहीं हो सकती,
लेकिन राम वाली आत्मा पुरुष बनती है ये बात ठीक है, पुरुष से जगह पुरुष, लेकिन जब छोटी मम्मी स्त्री बनेगी पुरुष बनेगी तो राम वाली आत्मा के उनके सहयोग के रूप में स्त्री बनेंगे क्या,
क्या बन गया, क्या बन जाएंगे घर के भैया,
संस्कार डालते है तभी तो
आधा आधा हो गया, फिर क्या
हम इस्लामियों को कहते हैं कामिल, क्रिश्चियनों को कहते हैं क्रोधी, भविष्य में वो लोग उंगली उठाएंगे आप हमें कैसे कामिल कहते हैं, हम आपको माना हमें कैसे क्रोधी कह रहे हैं, क्या किया हमने, क्या हिंदुओं में सब नहीं दिखाई दे रहा है आपको,
एटम बम किसने बनाए,
क्रोधियों ने बनाए, और जो इस्लामियों के लिए कामियों को बोलता है उनके लिए फिर
बहनों को भी नहीं छोड़ते,
आगे और सोचेंगे,
कुछ भी पूछो तो तुम्हारे अंदर तो जो संस्कार सो बाहर निकलने चाहिए ना,
झांसी के वार्तालाप में बोला कि जो पल्लू होता है ना पल्लू के लिए पूछ बोला ना, लंबा लंबा पल्लू रखते हैं पूछ बोला, लेकिन उसमें ये सात्विक भाव है ना कि ढंग से उसको लिया जाए ताकि ढंग से शरीर को हम ढक सके, इस हिसाब से लिया जाता है, इसलिए पल्लू उस हिसाब से लिया जाता है, उसमें पूछ बोल दिया बाबा ने कि उनका भी लंबी लंबी पूछ होती है, माना वो जो पल्लू लंबी पूछ दिखाया है तो फिर उसका क्या है,
क्या तुम्हें जो पल्लू सही उपयोग करते हैं
हाँ।
वो पल्लू लटकाते ही नहीं, वो सीधा कंधे पर अल्लाह के डाल देते हैं,
और बाबा
जिन्हें पल्लू को शो करना है
तो
गाय बम्बैया वाले लोग गोरी को पल्लू लटके
थोड़ा पूरा आगे,
आगे। बस इतनी बात तो वो अपनी लटकाई लटकाई फिरती है, नहीं तो उसको तरीके से कंधे को ऊपर डाल के रखना चाहिए,
सक्त आसक्त और अनासक्त इसका क्या मतलब है, सक्त
वो सक्त है वो आसक्त है, का उसमें मिला हुआ है, शब्दों को गड़बड़ मत करो
नहीं सख्त आसक्त
ये सख्त में सिर्फ ता है
हाँ,
ता का नहीं है
हाँ, हाँ, हाँ।
आसक्त में का मिला हुआ है वो उस अर्थ से कैसे लगा सकते
तो फिर आसक्ति और अनासक्ति ऐसे ले सकते हैं ना,
हाँ जी
देखिए आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर तुम डायरेक्ट बाप से पढ़ोगे
सीखोगे
सीखोगे हाँ तो डायरेक्ट बाप से सीखोगे तो बेसिक वालों ने बेसिक में रह करके अपनी आत्मा रूपी सुई की कट उतर दी तभी तो उन्होंने बाप को पहचान लिया ना, तो
समूह वालों ने कहाँ पहचान लिया,
तो बाबा तो बोलते हैं ना कि बेसिक में रह करके बिंदी को याद करते करते उनकी आत्मा तीखी बन जाती है, सूक्ष्म
बेसिक वालों की आत्मा तीखी बन गई, गुलदार दादी में लटके हुए
तो जैसे बेसिक से जो स्टूडेंट्स इसमें आए हैं
एडवांस में आए
हाँ तो फिर उनकी कट उतर गए तो बाप से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना वो
बेसिकली
हाँ बेसिकली कट उतरी और पढ़ रहे हैं, लेकिन जो समझो डायरेक्ट आए हुए हैं पिछले जन्म में
यज्ञ पिछले जन्म में उनकी उतर चुकी है,
अच्छा माने यज्ञ के आदि में ना उन्होंने उतर दी इसलिए डायरेक्ट पढ़ और एक स्टूडेंट का प्रश्न है कि ट्रेनिंग सेंटर खोला है बोला, आप बोलते हैं कि बेसिक में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, फिर ये बोला जाता है वो बोला जाता है, बेसिक वालों की उंगली आपने उठाई बोला,
क्या
बेसिक में भी ट्रेनिंग सेंटर है ना, ट्रेनिंग देते हैं कन्याओं को, कोर्स वही कोर्स कराना
कैसे,
नडियाद में माउंट आबू में ही नया भी खोला है तलाटी में, तो फिर
उठाने की आवाज
नहीं, तो वो ये बोले कि आपका जो ट्रेनिंग चलता है बहनों का जो ट्रेनिंग मैंने सुना है, बोले कि यहाँ भी ट्रेनिंग है आप लोग।
अरे हमने बेसिक वालों के लिए कब बोला कि ट्रेनिंग खोलते हैं, हम तो नहीं बोला ना, उंगली उठाई
तो
किसी लिटरेचर में नहीं,
तो ये बात मुझे पता नहीं थी कि हमने उठाई।
बेसिक वाले ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं,
हाँ।
इस संबंध में हम तो कभी बोला नहीं,
तो उनका कहना ये था कि फिर आपका जो खुला है ट्रेनिंग सेंटर, जो कन्याओं को ज्ञान योग की जो भी ट्रेनिंग देते हैं आप लोग, तो क्या वो मुरली में बोला है क्या, बोले ऐसे बोल रहे थे, मानो मुरली में उसका कोई डायरेक्शन
हमने, क्या हमने ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर कभी उंगली उठाई नहीं, गलत थोड़ा ही है ट्रेनिंग सेंटर खोलना,
तो फिर
माताओं के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए, भाइयों के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए, कन्याओं के लिए भी, कन्या के लिए पहले खोलना चाहिए, उन्हें तो कोर्स देना है।
माने ये मुरली में बोला है ना बाबा,
क्या बोला है
अभी जो आप बोले कि सेंटर खोलना चाहिए करके, माने उनका कहना ये है कि ज्ञान योग का जो ट्रेनिंग का सेंटर आपने भी खोला है जहाँ ट्रेनिंग देते
हैं। हम तो ब्रह्मा कुमारियों कभी उंगली उठाए ही नहीं,
ब्रह्मा कुमारियों की बात नहीं,
हाँ।
हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है ना, जैसे भी फोर में चल रहा था ना, बहने जाती थी, ज्ञान योग का सुनती थी,
अच्छी बात है,
हाँ। तो मैं उनको फिर, मुझे मुरली पॉइंट का कुछ पता नहीं था कि मुरली के अनुसार ट्रेनिंग सेंटर खोला गया कि नहीं, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना बोली, मैंने बोला वहाँ पे कोई आलतू फालतू बातों के लिए थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे सिर्फ ज्ञान और योग के पुरुषार्थ के लिए बातें समझाई जाती है, और वहाँ पे सिर्फ ज्ञान योग के अतिरिक्त और कोई बातें थोड़ी दी जाएगी, क्योंकि हमको आत्मा को पुरुषार्थ करना है ना, पुरुषार्थ का मतलब ही क्या, ये मैं उनको समझाई थी, तो बोले अच्छा अच्छा ऐसा है, तो फिर मैंने बोला
बीके,
दिल्ली का एक स्टूडेंट आया था ना बीके का दिल्ली में, तब मैं एंट्री में थी उस समय की बात है, तो फिर वो पूछे थे उस समय, तो फिर मैं उनको बोली बीके में तो जो ट्रेनिंग खोला है उसमें तो सब कुछ सिखाते हैं, मैंने बोला कैसे ट्रे में पानी देना है, स्टूडेंट आता है कैसे किस तरीके से ऐसे, मैंने बोला उससे क्या, वो तो जनरली नॉलेज घर के लौकिक माँ बाप भी देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ज्ञान योग की शिक्षा देनी चाहिए, तो वो वहाँ पे नहीं दे रहे है, जनरली बातें दे रहे है जो शारीरिक प्रभावित किया जाता है ऐसे, फिर उनको
ये भी देना चाहिए किचन में खाना कैसे बनाना, वो
तो यही बातें देते हैं ना बाबा, वहाँ पे कोर्स आदि नहीं सिखाते हैं, हम लोग भी 2003 में जब ट्रेनिंग में गए थे ना, उस समय ये सब बातें ज्ञान की नहीं सिखाए, कोर्स तो हम खुद ऐसे पढ़ पढ़ के किताब सीख गए थे, वो लोग वो शिक्षा नहीं देते, तो मुझे जितना पता था तो मैं उनको उस तरीके से बता दी थी।
कहाँ से निकली,
हाँ तो उसका, हाँ उनके मुख से ही निकली है, इसलिए सोमरस बोला
था। और क्या,
बाप रे माना,
बाप रे माना,
ब्रह्मा के द्वारा भी,
बाप रे कुछ हो गया
बाबा, द्वापर के आदि में भी सीढ़ी कटा हुआ है थोड़ा थोड़ा, द्वापर का जो सीढ़ी का चित्र है ना, द्वापर के आदि में भी सीढ़ी कटा हुआ है, त्रेता के अंत में तो कटा ही है, उसका तो क्लेरिफिकेशन है, लेकिन द्वापर के शुरू में जो कट है वो क्या मतलब उसका,
थोड़ा थोड़ा द्वापर शुरू हुआ है,
माना असली तो त्रेता के अंत से ही शुरू हो गया ना, चैतन्य परम धाम में बाप जाते हैं तो बच्चों को भी ले जाते हैं,
ले जाते हैं,
तो फिर उसमें जाने का रास्ता क्या है ना,
जाने का रास्ता,
स्थूल रास्ते की बात नहीं कर, परम धाम की बात कर रहे, आप मुझे स्थूल रास्ता बता रहे, जैसे मुझे हवाई जहाज में घूमना है अभी, मुझे चैतन्य परम धाम जाने का रास्ता
होता है, चैतन्य परम धाम जाने का रास्ता तो होता है, चैतन्य परम धाम कोई नीचे तो ऊपर थोड़ा ही है, नीचे है,
हाँ नीचे ही है,
हाँ?
तो फिर जाने का रास्ता, मुझे जाना है ना, फिर मेरे लिए वो रास्ता
ना, हाँ तो फिर जब पहचानो तभी अभी तो माया ने शक्ति बनाई सबको, माया कहो, माया ने जिससे हाथ मिलाया वो कहो, दोनों मिलकर ने शक्ति बनाई।
ये भी ड्रामा भी मीन है ना,
ये
भी मीन्स जैसे क्या बोलते इसको, एक को निश्चय बुद्धि साबित करना है, माने साकार वही निश्चय बुद्धि साबित होगा ना एक बाप के ऊपर, तो फिर बाकी को नंबर वार अनिश्चय बुद्धि होना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है उनकी भी, तो फिर क्या संस्कार भरे हुए हैं। आप बताए नहीं मुझे परमधाम का जाने का रास्ता,
बता दिया
क्या होता है,
पहले बीज रूप परमधाम में जाओ, फिर आधार रूप परमधाम में जाओ। बुद्धि की शक्ति से
ना योग माना याद की, मन बुद्धि में याद की शक्ति से ना।
अरे चैतन्य का मतलब बोलता चालता,
हाँ तो चैतन्य बोलता चलता है, लेकिन मैं तो मन बुद्धि के द्वारा ही,
अभी चैतन्य की बात कर रहे थे, मन बुद्धि की बात कर रहे हैं,
तो मन बुद्धि
से ही तो ठिकाना ही नहीं है बात करने
का, मन बुद्धि से ही तो चैतन्य माना जाता है ना, आत्मा एक बुद्धि आत्मा है,
तो चैतन्य की बात कर रहे हैं कि सिर्फ मन बुद्धि की बात कर रहे हैं,
चैतन्य की बात कर रहे
हैं, सिर्फ चैतन्य की बात कर रहे हैं, मन बुद्धि की बात नहीं कर रहे,
मन बुद्धि सही थी तो चैतन्य माना जाएगा।
हाँ परम धाम जो सूरज चांद सितारों से ऊपर है वो क्या माना जाएगा,
वो कहा चैतन्य बोले है वहाँ पर, लेकिन सारे जड़वत है वहाँ, क्या चैतन्यता है हमारी,
तो बस
आत्मा है वहाँ पर, तो है जड़वत,
अकेली मन बुद्धि है ना,
हाँ अकेली मन बुद्धि है,
तो इसलिए तो कहा कि तुमको कंप्लीट होके जाना पड़ेगा,
साकार के द्वारा निराकार बिंदु तक ना स्टेज की बनाने की बात है ना, फूल के नहीं बना
तो दिया, झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो कैसे हाँ, ले जा रहा है
हाँ, हाँ। शिव बाबा मेहमान बनकर आते हैं ये धरती पर, मेहमान है वो, और फिर ये बात भी तो बोला है ना कि वो बिना बुलाए आते हैं,
तो
दुनिया में
अभी तक तो बुलाया क्या
लेटर किसने लिखा था,
मैंने कोई तारीख डाली कि इस तारीख को आना,
अभी
कहते मैं कोई हद में थोड़ा ही बोल रहा है, अभी मैंने बुलाया था क्या, मैंने बुलाया था अब तो आए, अरे बुलाया था तो चित्तारी किसी को ही,
मैं
हद
में थोड़ी मेहमान होता है क्या, अपना फैमिली क्या नजदीकी संबंधी बाप पिता बच्चा जो संबंध होता है उसमें मेहमान किस बात का, बाप और बच्चे में कोई मेहमान बाजी होती है क्या,
बता लो
क्या नहीं
बात है क्या, पूछो जो पूछो सो सब मैदान में पूछो, किस बात है बोला खेल बात का बात, ऐसा ना का बाबा कोई देखा नहीं
माँ महाभारत में दिखाया है बाबा कि कृष्ण अर्जुन को जब गीता ज्ञान देता है ना तो दोनों सेनाओं को एकदम माना क्या करते हैं स्टॉप कर देता है माना एकदम
रुको
रुक जाओ किसी का कुछ एक्शन चलता ही नहीं है तो फिर उसकी शूटिंग आप कैसे माना क्या मतलब है उसका गीता ज्ञान भी दिया जा रहा है और वो दोनों सेनाओं को स्टॉप भी कर दिया कैसे जिनको बाप ने स्टॉप कर दिया और गीता ज्ञान अर्जुन को
सुनाया माया का युद्ध है कोई ऐसा युद्ध तो नहीं है दो सेनाओं का युद्ध है राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय है राम संप्रदाय बाबा की याद में रहते हैं बाबा की याद में रह करके युद्ध करते हैं माया से धड़ाधड़ 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 जो रावण संप्रदाय याद याद भूल जाता है वो भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ करता है
लेकिन दोनों को स्टॉप किया ना
दोनों को स्टॉप
और फिर जो बीच में एक भाई था बस उसे ज्ञान सुना दिया
बस वही सुनता है सब दोनों रुके हुए हैं
कब की बात है
तुम जिंदगी भर पूछते रहो हमारे पास जिंदगी भर के लिए जब क्या कर रहे हो
तुम बच्चे शू को हाथ भी नहीं लगा सकते कीचड़े वाले कोई शिव को छू सकते
छू भी नहीं सकते शिव माने ज्योतिबिंदु थोड़े छूने में आया
वो छूने में नहीं आएगा लेकिन साकार में आया हुआ है
साकार में आया हुआ है लेकिन वो तो बताया तुम मुझे इतना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ
तो छूने की बात ही नहीं आती
ना तो भ्रुकुटी के मध्य में बैठता है छोड़े कहा पहुंचता है
ब्रॉड ड्रामा में रामली आत्मा के जो माना जैसे प्रेशर जन्म में वो जन्म मरण के चक्र में आएंगे ना उसकी जन्म मरण के लिए बोला है निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि के लिए तो फिर रामली आत्मा की यहाँ ब्रॉड रामा की जो जन्म मरण की शूटिंग है वो संगम युग में जन्म मरण की शूटिंग का जो शूटिंग है वो कैसे होता है यहाँ
मृत्यु उसकी होती है जो कुछ करके नहीं मरता है जो कुछ करके मरता है उसकी मृत्यु नहीं होती है उसका तो जिंदगी भर लोग याद ही करते रहते हैं जिंदा ही रहता है ऐसे राणा प्रताप को लोग याद ही कर रहे हैं अभी तक शिवाजी को महाराष्ट्रीय याद ही कर रहे हैं
तो फिर माना ब्रॉड ड्रामा में भी फिर उनका जन्म मरण माना नहीं जाएगा ना उधर भी तो याद करेंगे फिर
अर्थ दूसरा
कैसे
माना वो हमेशा जिंदा रहते हैं मरते नहीं है
हमेशा
भले शरीर छूट गया लेकिन छूट जाने के बाद भी उनके चरित्र हमेशा जिंदा रहते हैं
दुनिया वाले याद करते
हैं याद करते रहते हैं वो मरे नहीं है ओल अमरनाथ की जय
और भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होते हैं ना जैसे मीरा को हुए राय दास या जो भी है उनको हुए तो साक्षात्कार कौन कराता है सुप्रीम सोल शिव कराते हैं या साकार जो जिसके तन में आए हुए तो वो कराता
है ऑटोमेटिक उनकी आत्मा पार्ट भरा हुआ है उन्हें ऐसा सपना उन्हें ऐसा साक्षात्कार होता है ना कोई कराता है
तो संगम पर उन्होंने ऐसा किया क्या
तो संगम पर ही बन जाते
तो फिर संगम पे ऐसा क्या करती वो जो उधर ऐसे ऐसी साक्षात्कार लेते हैं जो साक्षात्कार जिंदा
ज्यादा भावना में आके अच्छा प्रसाद मिलते हैं
उसी नशे में वो आके फूट जाती है, क्या नाम है ना, तो वो तो कृष्ण का ही एकदम बापरे आखिर नहीं तो भी कृष्ण 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 कहते हैं सब युग में शेर और गाय होती है, तो वो बेहद में तो चलो विजय माला रुद्र माला है ठीक है ना, शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते है ना सब माना स्वर्ग में बोलते हैं, तो फिर वो विजय माला और रुद्र माला है तो ये तो बेहद में हुआ, लेकिन स्वर्ग में हद के शेर और गाय की बात नहीं है ना, सिर्फ बेहद के है ना,
इंसान नहीं होती चीज तो क्या होगा, इंसान प्राणी कैसे होगा,
क्योंकि शेर भी खूंखार होता है
खूंखार
बाबा, चोटी में शिवलिंग बनता है बोलते गांठ लगाने से, कैसे बनता है वो, मैं तो बहुत से लोगों की ब्राह्मणों को भी चोटी देखी और बहनों की भी चोटी देखी गांठ लगा के, लेकिन मुझे ऐसे दिखाई नहीं शिवलिंग
का जैसे नाक का किनारा होता है, काफी रोड़ा उठा ये लोग, ये काफी रोड़ा है,
ये चोटी है ना,
अरे ये लगा ये पीछे चोटी लटक रही है, इधर रंग है आंख है, ये चोटी पीछे
इसको गांठ लगाना
है, अब चोटी को गांठ लगाओ, ए देखो ये गांठ ये क्या बन गया, ये शोभा बन गया कि नहीं अंदर,
मैं सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, तो ज्ञान या फिर जो भी शक्तियाँ है उनके अंदर, गुण या फिर प्यार का सागर सुख का सागर जो भी है, यही उनके लिए सर्वशक्तियाँ मानी जाएगी ना, यही सारी शक्तियाँ उनको मानी जाएगी,
वो सबको क्रॉस कर सकता है
इन सभी मामलों में,
सब कुछ वहाँ हर तरीके से, लेकिन उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए सर्वशक्तियाँ
हर बात में ना,
हर बात
ज्ञान योग धारणा सेवा जो भी सब काशी नगरी जो है वो बिगड़ने वाले काम को भी ज्ञान की शक्ति से सुधार देते हैं,
तो नरक बन रहा है तो स्वर्ग बन रहा है,
नहीं ऐसे मुरली में मैं सुनी
हूँ, दुनिया बिगड़ रही है नरक बन रही है स्वर्ग बन रहा है,
उनका सहयोग नहीं मिलता क्या कुछ परसेंटेज में
बनाए ना स्वर्ग,
उनको तो प्यूरिटी के मामले में बहुत ऊंचा माना गया है ना,
तो शास्त्रों लोग
और गीता का एक सातवें अध्याय का 14 नंबर का श्लोक है, दैवी माया के लिए बताया गया है कि दैवी है ईशान गुणमय मम माया दुरत्तया मामे प्रपदन्ते मामो नेतम तरन्तिते, ऐसे बोला है, उसमें क्या बताया कि मेरी यह दैवी माया निश्चय ही कठिनाई से पार करने योग्य है, एक दैवी माया है एक आसुरी माया है, तो फिर दैवी माया माना कैसे समझा जाए उसे, दैवी माया माया तो अच्छी मानी नहीं जाती ना, लेकिन दैवी माया है,
दैवी माया
तो कैसे
आसुरी माया तो हो गई कुमार का, दैवी माया हो गई बड़ी बन
गई, तो उसे क्रॉस करने के निश्चय कठिनाई से पार करने होते है ना, वो तो मेरी ही शरण लेते हैं वो इस माया को पार कर
पाते, तो पार कर नहीं पाते बेचारे, देवी ही माया दुरत्तया
नंबर वन रचना है ना बाबा उसको कैसे पार कर पाए
माया में काम उसके लिए भी तो कह देते हैं शंकर की दाढ़ी हिलाई गई
तो सबको इतना अनित सिंह लाती
है
जो चार ब्रह्मा के मानस पुत्र है ना उनका 36-37 में भी कोई पार्ट था क्या राम वाली आत्मा के साथ
पहले
पहले
कलकत्ते में चार घोड़ों की गाड़ी चलाती थी तो बाबन क्यों बोला चार घोड़ों की गाड़ी चलाते चार
घोड़े थे
चार घोड़े की गाड़ी भी चलाते
ड्रामा के बंधन भी बंधा हुआ तो जो ड्रामा का जो डायरेक्टर होता है वो थोड़ी बनता है आपके ड्रामा में कैसे बनेगा वो तो एक्टर को चलाता है
तो वो पढ़ते ही पीछे रहकर काम नहीं करता
माना उसका वो बंधन हो गया
बंधन नहीं
हाँ पर्दे के पीछे रहना एक बंधन जैसे कि मुझे आगे जाना नहीं स्टेज पे करने वाला तो वही है सब कुछ नहीं लेकिन बच्चे तोड़ते हैं तो वो तो कठपुतलियां है ना उनको तो चलाने वाला वही तो डायरेक्टर है फिर वो नहीं तोड़ता प्रकृति के नियमों को प्रकृति के नियमों को तो फिर बच्चे कैसे तोड़ेंगे जब वो करने वाला ही नहीं तोड़ता है तो बच्चे क्यों तोड़े
मार नहीं देते हत्या नहीं करते क्या
नचने वाला वो है ना बाबा
हत्या करते ही नहीं
करते
ही बाबा हत्या करवाता है
फिर नचने वाला क्यों बोला
वो हत्या कराने वाला है
नहीं है कराने वाला
फिर कहेगी वो
तो बच्चा और संघ में आकर धर्म इधर और संघ में आकर वैसे संस्कार
होते करते हैं बाबा थोड़ी पढ़ाई पर आता है
सत्यम शिवम सुंदरम कहते और ये भी कहते ब्रह्म विष्णु महेश तो इन तीनों जो शब्द है उससे ब्रह्म विष्णु शंकर कनेक्ट रहेगा
सत्यम
शिवम
शिवम
सुंदरम
तो तीनों एक ही है
लेकिन जैसे सुंदर मां सुंदरता होती है
शिव
एक वार्तालाप में बाबा बहुत अच्छा बताए इसका क्लेरिफिकेशन कि सत्यम शिवम सुंदरम है तो विष्णु जो है जैसे प्रैक्टिकल पार्ट आ रहे ना वो भी शैतान की बात बताए इसके लिए
विष्णु है कौन विष्णु तो अलग से है क्या
नहीं अलग से नहीं है
वो एक ही तो है
हाँ एक ही है और सत्य भी वही हो गया क्या फिर और सुंदर भी वही हो गया नारायण में लहवाना सुंदर
इससे ज्यादा सुंदर इससे ज्यादा काला कोई दुनिया में होता ही नहीं
मानो वो ब्रह्मा की शंकर ही बात नहीं है ना
सिर्फ शंकर ही
अगर हम प्रजापिता ब्रह्मा नारायण और शंकर ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश माना ही जाएगा ना उनको
टाइम टू टाइम का अलग अलग पार्ट
हाँ अलग अलग पार्ट तो है
नारायण है तो प्रजापिता नहीं प्रजापिता है तो नारायण
पार्वती ने राम को पूछा था ना कि प्रभु, नहीं पार्वती ने शंकर को ही पूछा था कि प्रभु आपका आराध्य कौन है, नारायण है या विष्णु है, ऐसे पूछा था। तो माना फिर उन्होंने बात बताई कि मेरा तो आराध्य विष्णु है, माना नारायण है, और नारायण को पूछते हैं लक्ष्मी, तो नारायण बताती है कि महादेव शंकर है, ऐसे बताती है ना। लक्ष्मी जब पूछती है नारायण को कि किसको याद करते हैं, तो वो कहते मेरे आराध्य तो महादेव है, और महादेव को पार्वती पूछती है तो कहती मेरा आराध्य तो नारायण है, एक दूसरे को बताते। तो यहाँ पे हम विष्णु और महादेव को किस रूप में ले, शिव शंकर
महादेव तो एक ही हो गए।
हाँ एक ही हो गए, तो फिर उन्होंने एक दूसरे की बात बताई ना आराध्य के रूप में।
कोई होता ही नहीं अलग से,
अलग से नहीं है, साकार ही विष्णु है, ठीक
है,
विष्णु है, विष्णु है। तो उन्होंने जो बात बताई, जैसे विष्णु अलग अलग नहीं है, शंकर भले अलग नहीं है, लेकिन दुनिया में जो कहते हैं ना कि उन्होंने बोला कि मैं उनको याद करता हूँ, उन्होंने बोला कि मैं उनको याद करता हूँ, तो साकार में शिव शंकर की बात हो गई क्या। तो फिर शिव को महादेव के रूप में ले और शंकर महादेव नारायण के रूप में ना।
प्रकृतिं स्वाम् अवस्थम्य,
हां प्रकृतिं
ओ दे
वो तो साकार ही है,
जब उसकी प्रकृति है वो पुरुष है, वो पुरुष और वो प्रकृति है, तो वो एक दूसरे को पूजा नहीं करेंगे। स्त्री पुरुष की सेवा करे, पुरुष स्त्री वो उसको सिलेंडर हो जाए, वो उसको सिलेंडर हो जाए।
तो यहाँ पे तलवार चलाते हैं, तो ज्ञान के लिए तलवार बोला ना, तो यहाँ पे ज्ञान की तलवार बोलेंगे या बातों की तीर कमान करेंगे। आंखों से 10-50 भूले होती है रोज, फॉर एग्जाम्पल भूले
मानो
वो उनकी भूल नहीं है ना,
यहाँ तो भूल ही मत।